نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Amazed by Allah's Maul Husna, آج ہم اس سیریز میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک اور خوبصورت نام البدی دیکھیں گے. البدی بعد العین بدا کا لفظ پہلی دفعہ کام کرنا, موجد بلا نمونہ ایجاد کرنے والا, بے مثال پیدا کرنے والا, اور اصطلاحی معنوں میں ہم اس کو لیتے ہیں تو النہج الاسماء میں تفسیر ہے, یعنی اس نام کی کہہ لیجئے کہ ایک ڈیفینیشن دی گئی کہ البدی وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو بغیر نمونے کے پیدا کیا, یعنی ہر چیز کو وجود اولا اسی ذات نے بخشا کہ اس بدی کی تخلیق سے پہلے اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا یا اس چیز کا کوئی وجود نہیں تھا, کوئی سیمپل نہیں تھا, کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کر کوئی کہے کہ اچھا یہاں سے آئیڈیا آ گیا, یہاں سے خیال آ گیا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت زیادہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس بھی جو ہوتے ہیں نا, وہ بھی کسی کے پچھلی چیز کو لے کر آگے چلتے ہیں. آج سائنس کی جتنی بھی ترقی ہے آپ اس کو دیکھیے تو پچھلے کیے ہوئے کام کی کنٹینویشن ہوتی ہے. اسی طرح دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ تو اس کا ضرور اثر ہوتا ہے نا پیچھے سے. لیکن جب آپ اس کائنات پہ نظریں ڈالتے ہیں حیران نہیں ہوتے آپ, پہاڑ کیسے خیال آیا, سورج چاند ستارے زمین, پھر پھول پودے پتے گوبھی آلو مٹر کیسے خیال آیا, البدی کو خیال آیا. البدی کی ہستی آپ کی میری سوچ ہمارے دماغ کی کسی باریک سے باریک رگ میں بھی اس کا تصور سما نہیں سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب کبھی آپ کے دل میں کوئی نیا خیال آئے, کوئی آئیڈیا آئے تو سمجھ جایا کرے کہ البدی کی طرف سے یہ چیز میرے پاس آئی ہے, کیونکہ ہمارے دماغ کی ایک بہت چھوٹی سی لمٹ ہے, لمیٹڈ اکاؤنٹ ہے ہمارا, جیسے لوگ کہتے ہیں نا بڑا لمیٹڈ پیکج ہے. اللہ تعالیٰ کی وسعتیں ہمارے اندر سما ہی نہیں سکتی. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ وہ ذات جس نے بغیر نمونے کے پیدا کیا, تو عربی میں آپ کیا کہیں گے, البدیع هو المبدی الذی فطر الخلق ابتداء لا الی مثال سبق, بغیر کسی پرانی مثال کے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام بہت دفعہ آتا ہے نا, بدیع السماوات والارض, نئی طرح بنانے والا, پہلی دفعہ بنانے والا, بغیر کسی نمونے کے, بغیر کسی مادے کے, مٹیریل کے بنانے والا. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب چیزیں بنتی ہیں تو اس کو بنانے کے لیے مشینیں چاہیے ہوتی ہیں, ٹولز, کوئی مرسالہ چاہیے, کوئی مٹیریل چاہیے, لیکن وہ ہے کہ نہ کسی آلے کا محتاج, نہ کسی مال کا, نہ مسالے کا, نہ اینٹ کا, نہ پتھر کا, نہ کوئی اس کو مقام چاہیے کہ جہاں بیٹھ کر کوئی ورک شاپ اور کوئی چیزیں بنی, نہ مکان چاہیے, نہ زمان نہ وقت کی قید, مقید ہر لحاظ سے آزاد. وہ ثنا ہے کاریگر نہیں. ثنا کون ہوتا ہے, سند سے, جو پہلے سے سوچتا ہے. کاریگر تو وہ ہے جس کو جو کہا گیا وہ بنا دے گا. تو حقیقی معنی کیا ہے, خالق اور موجد بغیر کسی کی اعانت یعنی مدد کے اور شرکت کے وجود میں لانے والا. اور پھر اس کی وسعتیں ختم نہیں ہوتی, زندہ مردہ, جاندار بے جاندار, ہر ایک کے اوپر یہ اصول فٹ ہوتا ہے. ہزاروں لاکھوں قسم کی سبزیاں, پھل, پھول, پودے, جڑی بوٹیاں, یہ اگر ایک کیٹیگری آپ باٹنی کی لیں, پھر زولوجی میں جائیں تو جاندار, انسان, انسان کا وجود, اس کا جگر, اس کے پھپھڑے, اس کی ہڈیاں, پھر جانور کے ساتھ ملائیے تو ہزاروں قسم کے جانور, کیا شان ہے اس کی, کس طریقے سے وہ سارے کام کرتا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. تو البدی الذی اسخر عجائب صنعتہ وغرائب حکمتہ, تفسیر ماجدی میں بھی یہ بات آتی ہے. اور یہ الرازی کہتے ہیں کہ البدی وہ ذات ہے جو اپنی صنعت و حکمت کے عجیب و غریب, یعنی جو اس کے عجائب اور غرائب ہیں نا, ان کو مخلوق پر آشکار فرمانے والا ہے, تاکہ مخلوق قدرت حق تعالیٰ کو دیکھ کر اس کی عظمت کو پہچان سکے. اور اسی طرح سے شیخ عبد الصمد الزہری کہتے ہیں اس نام کے بارے میں, کہتے ہیں کہ عجائب مخلوقات پر بہت کچھ کہا گیا ہے, لیکن انسان ایک عالم اصغر ہے, एक छोटा सा जहान है इंसान के अंदर छुपा हुआ। जितना ज्यादा आप इस इंसान के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा हैरत होगी। एक अजूबा है इंसान। कैसे नाक भी है जो पहाड़ों की तरह है, स्किन जो है मिट्टी की तरह है, बाल घास की तरह स्किन के ऊपर। फिर आप देखिए चौपाए जानवर, हाथ चार हाथ पांव वाले जानवर है ना, चलते हैं, चार सतूनों पे जिस्म का वजन दुरुस्त रहता है। लेकिन लकद खलक नल इंसान अफी अक्सानी तकवीम, तो अक्सानी तकवीम पे पैदा किए हुए इंसान को सिर्फ दो पाओं पे चलना फिरना सिखा दिया है ना, हैरत अंगेज। फिर आप देखिए कितना वजन होता है इंसान का, ज़रा 40 किलो भी हुआ तो एक मन तो हो गया ना, और अगर 80 किलो हो गया तो दो मन का वजन दो पैरों पे खड़ा कर दिया। ये अलबदी का कमाल है। फिर आप देखिए कि वो दो पाओं पर भी खड़ा हो सकता है, वो दौड़ भी सकता है, चल सकता है, लेट सकता है, बैठ सकता है, जिस्म का वजन बिल्कुल मुतवाजन रहता है। आप लेटते हैं तो कैसे आपका जिस्म है, और आपको तो हमारे जिस्म में खून ऐसे नहीं कि एक बाल्टी में डाल दिया और पाँव से बस आधे घुटनों तक आ गया, पूरे जिस्म में सर्कुलेशन होती है खून की। कैसे अल्लाह ताला ने हमें रखा, अगर एक पाँव होता तो हम कैसे खड़े रहते। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला जब किसी को दो की जगह एक पाँव देता है तो वो उस पर भी रह जाता है। अल्लाह की कुदरतों पर हैरान होने की ज़रूरत है। फिर इंसान चलता है, आपको था कि कुछ सी वर्ड में जो जानवर होते हैं ना, सार्स उसका नाम है कुछ और भी, तो वो घंटों एक पाँव पर खड़े रहते हैं, फिर जरा दो पाँव पे खड़े होने। फिर परिंदों को देखिए क्या खूबसूरत उसका तवाज़न है। तो जब इंसान को अल्लाह ताला ने इतना कुछ दे दिया तो फिर आप सोचिए कि वो इंसान जब किसी चीज़ को ईजाद करे तो उसकी हम कितनी तारीफ करते हैं। बिजली उसने ईजाद की, पेंसिलिन उसने की, न्यूटन ने ग्रेविटी को ईजाद किया, सिर्फ ईजाद करने वाले की हम इतनी इज्जत और कदर करते हैं। तो जिसने ये पहली दफ़ा बनाया होगा उसको देख लीजिए, जिस शख्स ने पहली दफ़ा रेस को ईजाद किया, टेलीविज़न बनाया, फ़ोन बनाया, कुछ आप देखिए कि आज के दौर में एटॉमिक एनर्जी है, क्या किया है, बनी हुई चीज़ को डिस्कवर किया है, बस डिस्कवरी कहते हैं ना इसको। लेकिन अल्लाह ताला अलबदी है, लोगों को अलबदी नहीं आप कह सकते। इस पूरी कायनात में इतनी चीज़ें मुख्तलिफ जिस्मों वाली, मुख्तलिफ वजन वाली, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम उसको देखकर कभी भी नहीं सोच पाते कि ये अल्लाह का कमाल है, अल्लाह सुबहान तआला ने ये सब कुछ किया। फिर इसी तरह से सूरत रोम की आयत 11 में आता है, अल्लाह यब्दउल खल्क सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैही तुरजऊन। अल्लाह ताला ही मखलूक की इब्तदा करता है, फिर वही इसे दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। एक दफ़ा भी उसी ने पैदा किया तो दोबारा भी वही पैदा करेगा। इसी तरह आप देखिए कि अलबदी की मखलूकात जमीनों आसमान में आपको दिखती हैं। आसमान जमीन खुद एक मखलूक है, फरिश्ते, जिन, इंसान, तमाम जानदार। फिर आप बेजान मखलूकात को देखें तो उसकी कोई तो हद ही नहीं है, आप कह सकते हैं पूरी कायनात को चलाने वाला। और जितना आप इसके बारे में सोचते जाते हैं आप हैरान होते जाते हैं। फिर इसी तरह सलफ सालेहीन क्या कहते हैं कि अलबहकी के मुताबिक वही बेमिसाल पैदा करने वाला है, वो अकेला अपने खास इल्म और कुदरत से पैदा करने वाला है। इमाम गजाली कहते हैं जो अपनी जात और सिफात में बेमिसल है। इसी तरह इमाम राजी का जुमला भी आपको बताया कि कैसे अलबदी हैं जो अपनी सनत और हिकमत के अजायब और गरायब को मखलूक पर आशकार फरमाते हैं ताकि मखलूक कुदरते हक ताला की अजमत को पहचान सके। अब ये नहीं पता कि हमने पहचाना है कि नहीं पहचाना, तो ज़रा सा खुलासा करें जो कुछ अभी पढ़ा है और इसको महसूस तो कीजिए। बातें करनी बहुत आसान है, महसूस करना मुश्किल है। आज महसूस नहीं हो पाता तो अलबदी, अजूबा रोजगार और बाकमाल मुजिद, अक्ल हैरान हो जाती है। देखिए एक चांद है तो उसी के मुख्तलिफ शक्लें को देख लीजिए, हवा तेज चलती, हवा सुबह की, ठंडी हवा, गर्म हवा, धुएं वाली हवा, अलबदी के कारनामे हैं। फिर चौपायों को चार पाँव पे चला दिया, इंसान को दो पाँव पे खड़ा कर दिया, परिंदों को उनके पेट के अंदर दो छोटे छोटे पाँव लगा कर खड़ा कर दिया, और इंसान तो फिर इससे बहुत बड़ी चीज़ है। अलबदी ने इन्नी जायलू फिल अर्दी खलीफा कहकर जब पेश किया तो अक्ल दी अलबदी ने और इंसान ने इस्तेमाल की, तो फिर इंसान वजूद नहीं हुआ बल्कि वो इनकेशाफ करता है या तालीफ करता है। तालीफ कहते हैं अल्लाह युअल्लिफ़ से जोड़ना, चंद बनाई हुई चीज़ों को इकट्ठा जोड़ लेते हैं। फिर आप ज़रा सा अलबदी की कुदरत के अजीब करिश्मे देखें ना, तो सबसे बड़ी चीज़ तो चींटी देखें, नमल, बज़ाहर हकीर और गैर अहम मालूम होती, لیکن محنت اور ذہانت کے لحاظ سے ایک نادر نمونہ ہے جس کی مثال ملنی دشوار ہے. ہر وقت مصروف، ہر وقت مشغول. وہ کہتے ہیں نا، ہر گھڑی تیار، کامران کامران. اس کی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں اور اس کے رہنے سہنے کے طریقوں کا حال آپ سن لے تو پریشان ہو جائیں. کیسے ایک کوئین ہوتی ہے اور باقی ورکرز ہوتی ہیں. ایک کام کرواتی ہے، باقی کرتی ہیں. تنظیم دیکھیے، تقسیم کار دیکھیے، ڈویژنس آف ورک دیکھیے، ٹیم ورک دیکھیے، اس کی ذہانت دیکھیں، اس کی سمیلنگ پاور دیکھیں. آپ کو نہیں پتہ چلتا لیکن کہیں میٹھا کہیں لگ گیا. کسی گلاس، کسی لفافے میں یا کسی بھی ریپنگ پیپر میں ایک چھوٹا سا قطرہ ہو جائے چینی کا، یہ اس تک پہنچ جاتی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. اور اللہ نے اس کے نام پر ایک سورت ڈال دی. آپ کہہ سکتے کہ کسی بھی طرح اشرف المخلوقات سے یہ کم نہیں ہے. یہ تو اللہ نے انسان کو عزت دے دی نا. پھر یہ جانور پالتی ہے، ان کو اپنے لیے استعمال کرتی ہے، اپنی فوج رکھتی ہے. چونٹیاں دشمنوں پہ حملہ کرتی ہیں، اسے کھیتی باڑی کا طریقہ بھی آتا ہے. کھیتوں میں ہل چلاتی، بیج بوتی ہیں، کاشت تیار کرتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا جہاں مٹی ہو تو وہاں چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگ جاتی ہیں. احتیاط سے اس کو کاٹ کے تہہ خانوں میں محفوظ کرتی ہیں، منتقل کر لیتی ہیں. مختلف طرح سے اپنے سردیوں کا انتظام کرتی ہیں. آپ حیران ہو کے رہ جائیں. جہاں لوگ زمینوں کا کام کرتے ہیں نا، ان کو چونٹیوں کی بہت ساری عادات پتہ ہیں. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ گھر میں چونٹیاں آ جائیں تو جینا دھبر ہو جاتا ہے. آپ کچھ بھی چھپا چھپو کے رکھیں، وہ پھر بھی پہنچ جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کی شان ہے، اس نے ایک چھوٹی سی مخلوق کو اتنی عزت دی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ چونٹیاں کچھ زمین کے ساتھ چڑی ہوتی ہیں، ان کی اپنی قسمیں ہیں. کچھ چونٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیٹ میں شہد ہوتا ہے، اور چونٹیاں اپنے چھوٹے چھوٹے ڈنگ کی مدد سے ان کیڑوں سے شہد حاصل کرتی ہیں. بعض مرتبہ چونٹیاں جو ہوتی ہیں نا، ایسے جانوروں کو اپنے چھتوں میں لاتی ہیں، پھر ان کی حفاظت کرتی ہیں. چونٹیوں کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو خود دودھ دیتی ہے. جی، حیرت ہو رہی ہے نا. میکسیکو اور آسٹریلیا کے بعض حصوں میں کثرت سے ایسی چونٹیاں پائی جاتی ہیں. اور ان کی زندگی کا مقصد اپنے دیگر ہم قوموں کو آرام اور غذا پہنچانا ہوتا ہے. ابتدا میں جو مزدور اور رضاکار ہوتے ہیں نا، ان کو گائیں بھینسوں کی طرح اچھی اچھی غذا مہیا کرتے ہیں، چارہ ڈال کے اس کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیے کہ کبوتر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ جو رضاکار چونٹیاں ہوتی ہیں، یہ ان مزدور چونٹیوں کو شہد کھلاتی ہیں. اور جتنا زیادہ یہ ان کو فیڈ کرتی ہیں، اتنی چونٹیاں موٹی ہونے لگتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنی موٹی ہو جاتی کہ اپنی جگہ سے ہل جل نہیں سکتی. اللہ اکبر. اور جب چونٹی نے کچھ نہیں کرنا ہوتا نا، تو اپنے بنائے ہوئے خانوں میں چپک جاتی ہیں. جا کے تقریباً 3 انچ لمبا اور 1 انچ چوڑا خانہ ہوتا ہے جس میں یہ چونٹیاں رہتی ہیں. گول طرح سا ہوتا ہے، کرو سا بنا ہوا. ہم نے تو وہ چونٹیاں دیکھی نا جو ہمارے گھروں میں، حالانکہ آپ ڈال کے دیکھیں اینٹس کا لفظ، آپ کو اتنی قسم کی دیکھیں گی چونٹیاں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کچھ کمرے ہوتے ہیں جہاں چوپالوں کا سا کام لیا جاتا ہے نا، گائے بھینسیں بیٹھتی ہیں، تو ان کی دیواروں سے یہ شہد بھری چونٹیاں اس طرح لٹکتی رہتی ہیں جیسے انگوروں کے خوشے لٹکتے ہیں. مزدوروں اور رضاکاروں کو بھی جب بھوک ستاتی ہے نا، تو وہ پھر یہ زندہ جو مرتبہ نا، یہ چونٹی کھائی جاتی ہے، آ کر اسے کام لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر کام میں لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے کام لیتے ہیں. ہم سن کے حیران ہوتے ہیں جس نے بنایا. اور کوئی دنیا میں ایک دو تھوڑی ہیں، ہزاروں لاکھوں موجود ہیں. تو بولیے فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر صرف دیکھیے شہد کی مکھی، پھر اس کو اللہ نے جو نظام دیا ہوا ہے. شہد کی مکھیوں کی طرح چونٹیوں کی بھی 3 مختلف قسمیں ہوتی ہیں، 3 گروہ ہوتے ہیں ان کے، ایک نر، ایک مادہ اور ایک رضاکار، جس کو آپ کہہ لیجیے ورکر بھی. چونٹیاں کفایت شعار اور گھر گھرستی میں بہت اچھی ہوتی ہیں. غذا کا ایک ایک دانہ محفوظ کر لیتی ہیں اور پھر ان کو بعد میں استعمال کرتی ہیں. بہت سلیقے سے ان دانوں کو بعد وہ زمین میں بو دیتی ہیں تاکہ وہ اگ جائیں اور بھی مل جائیں. اسی طرح شہد کی مکھیوں کا بھی بہت پیارا کام ہے. پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتی ہیں. تقریباً چھتے کے چاروں طرف 3-4 فٹ تک زمین بالکل صاف کر دی جاتی ہے. جیسے کسی باغ کی تیاری کرنی ہوتی ہے نا، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس میں سے جڑی بوٹیاں نکالی جاتی ہے. تو یہ ایک دنیا ہے، اس کو محسوس کیا کریں، ان سے برا نہ منع کریں. یہ شہد کی مکھیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں. اور اللہ نے کیسے ان کو شہد بنانے پہ لگا دیا. ہر مکھی شہد نہیں بناتی، ان کی بھی پھر آگے قسمیں ہوتی ہیں. اور جو ہیں وہ کوئی ایک رنگ کا شہد، کوئی دوسرے رنگ کا شہد. سورۃ نحل کی آیت 68 میں آتا ہے واؤخا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. और तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरह वही की कि कुछ पहाड़ों में से घर बना और कुछ दरख्तों में से और कुछ इसमें से जो लोग छप्पर बनाते हैं। सूरह नहल में आप इन आयतों को पढ़ें तो आपको हैरत होती है कि इतना कुछ करने वाली है ये। अल्लाह सच कहते हैं ना, खलक समावाती वल अर्द बिल हक की ताला अम्मा युश्रिकून, इसी ने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया है और वो इससे बरी है जो ये शिर्क करते हैं। तो लिहाजा आप मैं कह सकते हैं कि अलबदी की बनाई हुई चीज़ों पर इंसान को हैरत होती है। फिर आप देखिए कि अलबदी ने आसमान को छत और ज़मीन को फर्श बना दिया, उसकी तख्लीक कर दी। अक्ल हैरानी होती। कभी आपने इस आसमान के कोई पाए देखे हैं? कुछ दीवारें बग़ैर आमदिन तरऊनहा, और इतना बड़ा आसमान ठहरा हुआ है, एक दो नहीं, सौ नहीं, लाखों करोड़ों अरबों साल से ये ऐसे ही खड़ा है। कौन सी हस्ती है जिसने बनाया? फिर लोग ना शुक्री करें, फिर अल्लाह के शरीक ठहराएं, तो ना समझी की बात है। अकल ना ऐसा अर्श बना सकती, ना ऐसा फर्श बना सकती। जमीन को फर्श और आसमान को अर्श बना दिया उसने। इतनी बुलंदी कि इंसान तसव्वुर ना करे, और जमीन की इतनी पस्ती कि कोई इस पर दौड़ रहा है, कोई सवारियों को दौड़ा रहा है, कोई इस पर गंदगी फैला रहा है, कोई कुदाल चला रहा है, कोई इसको खोद खोद के कुएं बना रहा है। ना आपको आसमान का पता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, ना ज़मीन का मबदा पता है, ना मालूम, ना इनकी मुंतहा मालूम है। क्या होगा कल? ख़त्म होंगी तो कैसे होंगी, कैसे अज्जा से मिलकर बनी है? ये इतफाकी तौर पे तो नहीं बन गए? कोई कहता है गैसेज हैं, कोई कुछ, कोई बिग बैंग, कोई कुछ कहता है। लेकिन जितना आप गौर व फिक्र करेंगे आपका दिल खुलता जाएगा। फिर आप अलबदी की वसअतों को जानेंगे, उसकी कुदरतों को महसूस करेंगे। इसीलिए साइंस पढ़ने वाले अगर मुसलमान हो जाए ना, तो फिर आप देखिए कि उन तक कुरान पहुंच जाए ना, वो पूरी दुनिया को इस्लाम दिखा दें। फिर आप देखिए कि एक कतरा है आपसे इंसान की पैदाइश की, ये थोड़ी एक मिसाल है। आपके इर्द गिर्द ये मिसालें चलती फिरती भागती नहीं है। कभी इंसान सोचे तो अकल ना माने, कभी देखा सुना ना हो तो कभी दिल ही ना माने, कैसे आपके बराबर हो जाते हैं बच्चे? हालांकि आपके दरवाजे, कुर्सियां, मेज उतने ही हैं जितने भी। कैसे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजों को जोड़कर इंसान को पैदा कर दिया? फिर ये कैसे अंधेरे कमरे में बच्चे को पैदा किया, फिर बनाया, फिर माँ के रहम में कितने महीने रखा? कुछ नहीं पता अंदर क्या बन रहा है, और ये अल्लाह ताला करवाते हैं। सूरत अल इंसान, जिसको आप सूरह दहर भी कहते हैं, उसकी आयत में आता है, आयत नंबर 2 में, इन्ना खलकना अल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीही फजअलनाहू समीअन बसीरा। बिला शुबा हमने इंसान को एक मिले जुले कतरे से पैदा किया, हम इसे आजमाते हैं, बस हमने इसे खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला बना दिया। फिर थोड़ा सा गौर कीजिए छुपायों पे भी, खून के दरमियान से खालिस दूध देने वाला कौन? अलबदी। वाइन नलकुम फिलाना मिला इबरा, बेशक तुम्हारे लिए छुपायों में इबरत है। तो गौर व फिक्र करें तो जहालत से गुजर कर इल्म और मारफत के मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और जिसने अल्लाह की इस कमाल कुदरत को पा लिया ना, बस फिर उसको कोई हटा नहीं सकता। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि कभी सोचा तुमने पेट में से क्या निकलता है? खून की नालियां भी हैं, पेशाब की नालियां भी हैं, लेकिन ना तो रंग आता है रेड कलर और ना उसमें बू आती है पेशाब की। जब आप पीते हैं आपको दूध पीकर कैसा महसूस होता है? अल्लाह की कुदरत है। इतनी गंदगियों में से अल्लाह साफ दूध निकाल लेता है। दुआ कीजिए गंदे माहौल में अल्लाह हमारी नस्लों को भी साफ सुथरा कर दे। इससे पता चलता है कि नापाक और गंदी और बदबूदार चीज़ों के बीच में भी इंसान अपना दामन पाक रख सकता है, अगर उसका शऊर जिंदा हो, गौर व फिक्र। और एक दूध से क्या कुछ नहीं मिलता। कितना बंदा, आपकी फ्रिज में 10 चीज़ें होंगी शायद दूध से बनी हुई। कितना आसानी से हजम हो जाता है। बच्चा भी दूध पीता है, बूढ़ा भी दूध पीता है, बीमार भी दूध पीता है। और कैसे मशीनें लगाई हुई हैं चारों तरफ दूध बनाने की। यही घास आप डालिए किसी मशीन में और उसको रगड़िए और दूध बनता है। लेकिन जानवर घास खाकर, भूसी खाकर हजम करने के बाद कुछ हिस्सा गोबर और पेशाब में, कुछ रगों में गया और बाकी दूध थनों में आ गया। कोई चीज अपनी जगह से नहीं हटती। जब जानवर के थन को लें तो दूध ही निकलता, खून नहीं निकलता। अल्लाह अकबर कबीरा, किस तरह की ये शान है। अल्लाह ताला एक छोटे से सुराख के जरिए आपको ये दूध दे देते हैं, बाकी सब मुसामा तंग कर दिए जाते हैं ताकि दूध छन छन कर साफ होके निकले। हमने कभी फितरी चीजें देखी नहीं है ना, हमारा तस्वुर ही नहीं बनता। जो लोग दिन रात इन चीजों को देखते हैं उनसे पूछिए। फिर आप देखिए कि दाने का जमीन में फूल कर फटना, कैसे एक बीज जमीन में डालते हैं और वो फूटता है तो फिर उसके अंदर से दाना निकल के पौधा उगता है। आसमान से सूरज की शुआएं पड़ती हैं, हवाएं चलती हैं। बंजर जमीन ना हो तो एक दाना डालकर आप भूल जाएं, जमीन नहीं भूलने देगी, वापिस अमानतन उपहार लेके आएगी। तो जिस खालिक की जमीन इतनी बामानत है, वो कल आपके मेरे एक एक कमल को क्या जाया करेगा? नहीं जाया करेगा। फिर आप देखिए कि दाना जमीन में गायब हुआ और बाद में फूल कर फटा, फिर उसमें से रगें निकलती हैं, फिर जमीन में फैलती हैं, वो शाखों में ढलती हैं। ये शाखें ऊपर आती हैं तो एक पतली सी कोमपल डंठल, फिर वो एक तने में बदलती, फिर उस पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं। रंग फर्क, जायके फर्क, कभी भिंडी और करेले का फर्क देखे, कद्दू और सेब का फर्क देखिए, हर चीज फर्क है। यानी ये कायनात इख्तलाफात से भरी हुई है, लेकिन हर एक को अल्लाह ने उसका बेहतरीन रंग रूप दिया है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जितना ज्यादा आप इन चीजों को देखते जाते हैं, आपकी अकल गुम हो जाती है। फिर सबसे बड़ी बात है, बाज को बाज पे फौकियत दी है। आप देखिए कि आम और तरबूज को देखिए, दोनों फर्क है। कोई इसी तरह इंसानों में अमीर है तो कोई गरीब है, कोई मालिक है तो कोई ममलूक है। यही सिखाया जा रहा है कि इस कायनात में हुसन है, इख्तलाफात मुख्तलिफ किस्म के कायनात का हुसन होते हैं, इस पे गौर व फिक्र करो। फिर आप देखिए दुनियावी और मानवी रिस्क में फर्क है, किसी को अमीर किसी को गरीब, किसी को अक्लमंद किसी को बेवकूफ, किसी को जीनियस किसी को सीधा सा बना दिया। तो ये सब अलबदी के काम है, इतनी वैरायटी के साथ उसने इंसानों को बना दिया, और हर चीज की फिर आगे मजीद मिसालों से मिसालें भरी पड़ी हैं। फिर रिस्क की कमी बेशी भी अलबदी की तरफ से है, ताकि लोग एक दूसरे से फायदा उठा सकें। फिर आप देखिए कि ऊंट, अल्लाह ने ऊंट के पाँव को तीन तहों में तकसीम कर दिया, तो उसको चलना था जहां वो वहीं चलेगा, उसके मुताबिक उसके पाँव हैं। जानवर चूंकि बहुत बड़ा है और अरब लोग तो इसी को साथ रखते थे ना, वहाँ हाथी नहीं होते थे, तो अल्लाह ने बहुत सारी मिसालें कुरान में भी और अहादीस में ऊंट की दे दी। डिक्शनरी में ऊंट का बहुत ज़्यादा जिक्र है। अगर इंसानों को इस जानवर को पालना पड़ता तो शायद ज़िबह ही कर देते, खुद अपना पेट पाल लेता है, ऊंचे ऊंचे दरख्तों के पत्ते तोड़ लेता है, शाहें खा कर गुजारा करता है। हाथी को खुद खिलाना पड़ता है, कई जानवरों को खिलाना पड़ता है जो बाज़ दफ़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ऊंट खुद रो पौधे खा लेता है। अरब के जंगलों में पानी एक बहुत नायाब चीज़ है, हर जगह हर वक्त नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह ने इसके पेट में एक रिजर्व टैंकी लगाई हुई है, 7-8 दिन का पानी पीकर उस टैंकी में महफूज करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म की ज़रूरियात पूरी करता है। फिर आप देखिए कितने ऊंचे जानवर के ऊपर चढ़ना को मुमकिन था, सीढ़ी लगानी पड़ती, अल्लाह ने इसकी टांग को तीन हिस्सों में लपेट दिया, यानी हर पाँव में दो घुटने बना दिए, वो तय करके बैठता है और इस पर चढ़ना और उतरना आसान है। क्या ये अलबदी की कुदरत का नमूना नहीं है? और मेहनती कितना है कि सब जानवरों से ज्यादा बोझ उठा लेता है। अरब के मैदान में दिन का सफर धूप की वजह से सख्त मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ने इस जानवर को रात भर चलने का आदी बना दिया। और मस्कीन इतना है कि एक छोटा सा बच्चा इसकी मुहार पकड़कर जहां चाहे इसको ले जाए, लेकिन इंसान सीखता नहीं इन जानवरों से भी। इसी तरह आज के पारे में हमने ये भी पढ़ा कि क्यामत के करीब एक जानवर होगा जो बोलेगा, तो बेजुबान जानवरों को बुलवा देना अलबदी की कुदरतें हैं। और ऐसे वाक़यात भी तारीख में आते हैं कि कभी ना कभी किसी जानवर ने बोल कर भी किसी चीज़ का एहसास दिलाया। जब मुसलमान ईमान के आला दर्जों पे थे ना, तो उनकी बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की मिसालें हमें किताबों में मिलती हैं। आज हम बिल्कुल अलग हो गए। फिर इसी तरह देखिए कि अलबदी की हिकमतों का अहाता कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल। हिकमत तो दूर की बात है, हम उसकी हिकमतों का अंदाज़ा नहीं कर सकते। कैसे कायनात में मुख्तलिफ मिसालें हैं, और इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया के सारे मामले रखे हुए हैं। सूरत निसा की आयत 126 में आता है, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध व कानल्लाहु बिकुल्ली शयइन मुहीता, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज़ का अहाता करने वाला है। तो जितना सोचते जाएंगे आप उतना और सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि कुरान पाक की रोशनी में अलबदी का नाम कहाँ है। दो बार ये लफ्ज़ आपको दिखेगा कुरान पाक में, सूरत बकरा 117, बदी उस समावाति वल अर्थ व इज़ाकदा अमरन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकून। आसमान और ज़मीन का मौजूद है जब किसी काम का फ़ैसला करता है इसे बस यही कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। और दूसरा मुकाम है सूरत अलअनाम की आयत नंबर 101, बदीउस समावाति वल अर्दी अन्ना यकूनु लहू वलदुम वलम तकुल लहू साहिबा व खलका कुल्ल शईम व हुवा बिकुल्ली शईन अलीम। वह आसमानो जमीन का मौजिद है, इसकी औलाद कैसे होगी जबकि इसकी कोई बीवी नहीं, और इसने हर चीज पैदा की है और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। तो कहिए कि अल्लाह, हम तेरी कुदरतों को बस सोच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जान सकते। फिर अहदीस में देखिए अलबदी के नाम को, तो सही मुस्लिम की रिवायत है 7054, अबू हुरैरा रावी हैं। अल्लाह के नबी ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह ने मट्टी को हफ्ते के दिन पैदा किया यानी जमीन को, और इतवार के दिन में पहाड़ों को पैदा किया, पीर के दिन दरख्तों को, और काम काज की चीजें जैसे लोहा वगैरह मंगल को, और नूर को बुध के दिन पैदा किया, और जुमेरात के दिन जानवर फैलाए जमीन में, और आदम को जुमे के दिन असर के बाद बनाया। सबसे आखिर मखलूकात में, सबसे आखिर साथ में जुमे की असर से लेकर रात तक आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो ये अल्लाह ताला की शान है ना, काम करना सिखाया, वो तो कुन पे भी बना दे, लेकिन ये सारा ब्रेकडाउन बता दिया कि तुम भी कामों को हिकमतों के साथ करो। इसी तरह से एक और रिवायत सिलसिला सहीहा की 3828 है, अलबदी से मुतल्लिक अबू हुरैरा रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इनकी सूरत पर पैदा किया, इनका कद 60 हाथ था, 60 फिट। जब अल्लाह ताला ने इनकी तख्लीक की तो फरमाया, जाओ और फरिश्तों की बैठी हुई इस जमात को सलाम कहो, और गौर से सुनो कि वो आपको जवाबन क्या कहते हैं, क्योंकि यही जुमले आप और आपकी औलाद का सलाम होंगे। वो गए और सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, सलाम अलैका व रहमतुल्लाह, अल्फाज बढ़ा दिए। जब आदमी भी जन्नत में जाएगा तो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत और जिसामत पर दाखिल होगा, लेकिन दुनिया में विलादत आदम से आज तक कदो कामत में कमी आती रही, यानी दिन ब दिन कद छोटे होते जा रहे हैं। खुराक भी तो बदलती जा रही है ना, पहले दौर में लोग कहते थे दूध पियो कद लंबा होता है। आज अब देखिए जितना आर्टिफिशियल फूड आ गया ना हमारी जिंदगियों में, तो उसने हमारी ग्रोथ को बदल दिया। फिर इब्ने माजा की रिवायत है 203, इमाम जरीर कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने कोई अच्छा तरीका ईजाद किया और इस पर लोगों ने अमल किया तो इससे इसके अमल का अजर और सवाब मिलेगा, और जो इस पर लोग अमल करेंगे इनके अजर के बराबर भी इसे अजर मिलता रहेगा, इससे इन अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी ना होगी, और जिसने कोई बुरा तरीका ईजाद किया इस पर और लोगों ने अमल किया तो इसके ऊपर इसका गुनाह होगा, और इस पर अमल करने वालों का गुनाह भी इसी पर होगा, और इनके गुनाहों में कोई कमी ना होगी। तो अल्लाह हमें अच्छी चीज़ें बनाने वाला बनाए, अच्छी चीज़ों से मुतल्लिक अपने आप को हमेशा रखा करें। फिर एक और रिवायत है सिलसिला सहीहा की 2273, आपने फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की है, जिसके बारे में ये मालूम नहीं होता कि इसकी इब्तदा में खैर और भलाई है या इंतहा में। क्या पता चला शुरू में खैर थी या आखिर में थी, बारिश का भी नहीं पता होता ना, शुरू होती है तो नुकसान का जरिया तो नहीं बनेगी। फिर अलबती से मुतलिक दुआएं अरजगार देखें तो इसमें आपको इस्म आजम मिलता है कैसे, इब्ने माजा की रिवायत है 3858, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बियन्न लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लकल मन्नानु बदीयस समावाति वल अर्द या जल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ क्योंकि तेरे ही लिए हमद है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू बहुत एहसान करने वाला है, आसमानों और ज़मीन को बग़ैर मिसाल के पैदा करने वाला है, जलाल और अजमत वाला है। तो ये दुआ आप पीछे सीख चुके हैं, इसमें भी इसमें आज़म है, बड़ी प्यारी दुआ है, मुस्तजाबु दावात में से है, जो भी पढ़ेगा इंशाल्लाह अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करेगा। फिर आप देखिए कि अलमौज़ातिल हसना देखें, अगर इस नाम से मुतल्लिक तो क्या करें हम, अलबदी को ही कायनात की हर चीज़ का बनाने वाला समझना, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे गौर व फिक्र करना है, अलबदी की सनाई पे गौर व फिक्र करना है, और इसकी हक्कानियत पे पुख्ता यकीन रखना है। इसी तरह इंसान की खिदमत के लिए पैदा की गई मखलूकात पे अलबदी का शुक्रिया अदा कीजिए। चारों तरफ हम फ़ायदा उठाते हैं लेकिन शुक्रिया बहुत कम है। پھر اسی طرح ان مخلوقات کا اور اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال اللہ کے لیے کیجئے، کیونکہ اس نے یہ سب بنا کر آپ کو مجھے بتا دیا کہ کیسے کائنات کے نظام کو چلایا جاتا ہے، کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہوئے چند مزید باتیں البدی سے متعلق سمجھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مختلف قسم کی چیزیں بنائی ہیں نا، تو اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں پرندوں پہ۔ آپ کو پتا ہے کہ پرندے رات کو بھی اڑتے ہیں، دن کو بھی، اور راستہ نہیں بھولتے۔ کیوں؟ کیسے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں؟ تو آپ کو ایک چھوٹا سا کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس بات کی کھوج لگا لی ہے کہ موسم بدلنے پر ہجرت کرنے والے پرندے کس طرح سے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں۔ یعنی یہ بات حیرت ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ ہو کیسے جاتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ اس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ تو واقعی وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے یہ سارے معاملات کرتے ہیں اور سفر کے دوران راستہ بھی نہیں بھولتے۔ جدید تحقیق کے مطابق ہجرت کرنے والے بہت سے پرندوں میں ایسے خلیے ہوتے ہیں جو کرہ ارض کا مقناطیس، میدان اور زمین پر ہونے والی روشنیاں بالکل اس طرح واضح طور پہ دیکھنے میں اس کی مدد کرتے ہیں جس طرح انہیں زمین پر اگے درخت، چٹانیں اور دیگر اشیاء صاف دکھائی دیتی ہیں۔ اب آپ ان بادلوں کو دیکھ رہے ہیں، ذرا سا اندھیرا ہو جائے گا تو آپ کو نہیں دکھیں گے نا، پرندوں کو دکھتے ہیں۔ سال کے اس حصے میں برطانیہ سے تقریباً 3 کروڑ پرندے گرم علاقوں کی جانب ہجرت کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کئی پرندے تو ایسے ہیں جو برطانیہ یعنی برٹش سے سفر کر کے افریقہ پہنچیں گے۔ اس موقع پر جرمنی کی اولڈن برگ یونیورسٹی کے تحقیق کرنے والے ہینڈرک مارٹسن نے تجربہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکالا کہ پرندوں کی آنکھوں کے پردے میں ایسے خلیے ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ زمین کا مقناطیسی نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے باوجود راستہ نہیں بھولتے۔ اور مارٹسن نے جس جگہ سے پرندوں نے ہجرت شروع کی، اس جگہ کے قریب مصنوعی مقناطیسی میدان قائم کیا، اور مقناطیسی کشش کی قوت زمین کی عمومی کشش سے 90 اینگل یعنی 90 درجے پر رکھی، اور جب اس مصنوعی مقناطیسی میدان میں انہوں نے مقناطیسی لہریں پیدا کی تو وہ پرندے جو شمال کی جانب پرواز کر رہے تھے ان کا رخ مغرب کی جانب ہو گیا۔ اس تجربے سے حاصل شدہ نتائج کی تصدیق کے لیے مارٹسن اور ان کی ٹیم نے باغوں میں بسیرا کرنے والے پرندوں پر تجربات کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے چند پرندے جیسے کوئل وغیرہ پنجروں میں قید کر لیے، پھر ان پرندوں کا طرز عمل تبدیل ہوا تو اس سے انہیں معلوم ہوا کہ اب یہ پرندے یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں۔ تجربے کی خاطر مارٹسن اور ان کی ٹیم نے ان پرندوں کو رہا کرنے کی بجائے انہیں مار ڈالا، پھر ان کی آنکھوں پر تحقیق کی، جن سے ظاہر ہوا کہ ان پرندوں کی آنکھوں کے پردے میں مخصوص خلیے یعنی سیلز ہوتے ہیں جس میں کریٹو کروم نامی پروٹین ہوتی ہے۔ کریٹو کروم پروٹین اتنی حساس ہوتی ہے کہ مقناطیسی میدان میں معمولی سی تبدیلی بھی فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ مارٹسن کا کہنا ہے کہ آنکھ کے پردے پر کروڑوں خلیے ہوتے ہیں جو مخصوص طریقے عمل سے پرندوں کو مقناطیسی میدان بالکل اس طرح دکھاتے ہیں جس طرح راڈار پر طیارے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ پڑھ لیجئے، بک موجود ہے، اللہ یتجلی فی اسرار العلم، عربی بک ہے، اسی کا انگلش ترجمہ ہے جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، اس آئینے میں سبھی عکس ہیں تیرے۔ آپ نے اللہ کا جو نام بھی پڑھا آپ کو خاص لگا نا؟ اسی طرح ایک اور رپورٹ میں وہی رائٹر لکھتے ہیں کہ پھولوں کی ایک خاص قسم ہے جس کا نام جیک ان دی پل پوائنٹ ہے۔ اس پودے میں پھولوں کے گچھے دو طرح کے ہوتے ہیں، نر اور مادہ۔ اس پودے میں چھوٹے چھوٹے پیالوں کی طرح کچھ نباتی حلقے ہوتے ہیں، اور انہی حلقوں کے اندر پھول نشو و نما پا کر باہر آتے ہیں۔ دوسرے پودوں کی طرح ان میں بھی پھولوں کی نشو و نما نر اور مادہ کے ملاپ سے ہوتی ہے، لیکن ان پودوں میں ملاپ کا عجیب و غریب طریقہ مقرر ہے۔ نر اور مادہ یہاں براہ راست نہیں ملتے، بلکہ یہ ملاپ بہت چھوٹی مکھی کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ ہوتا یہ کہ پودے کے نباتاتی حلقے اوپر سے کشادہ ہوتے ہیں لیکن اندر جا کر تنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی مکھی نر پودے کے ان حلقوں کے اندر گھسنا چاہتی ہے، जो बीच में पहुंचकर बुरी तरह फंस जाती है। एक तो आगे रास्ता तंग होता है, दूसरे जो ही मक्खी किसी नर पौधे के हलके में दाखिल होती है, इस हलके के बालाई हिस्से से मोम की तरह का एक मादा अंदर की तरफ फैलना शुरू हो जाता है, जिससे हलके की दीवारें ढक जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता होगा सोचिए जरा। अब इस मक्खी को ना आगे जाने का रास्ता मिलता है ना पीछे हटने का, इसलिए वो अपनी जगह एक जुनूनी कैफियत में चक्कर काटती है। इस जुनूनी गर्दिश के सबब पौधे के तनासली जर्रात इस मक्खी के जिस्म से चिमट जाते हैं, और जो ही ये काम मुकम्मल होता है तो हलके के बलाई हिस्से से मोमी यानी मोम जो लगी होती है मादे का खरूज खुद बहुत बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर का हिस्सा थोड़ा सख्त होने लगता है और मक्खी जरा सा जोर लगाकर बाहर निकल आती है। इसके बाद यही मक्खी किसी मादा पौधे के हलके में इसी तरह दाखिल होती है, लेकिन मादा पौधे के हलकों में ये खासियत है कि वो मक्खी के घुसने के बाद निकलने नहीं देते। मक्खी अंदर पहुंचकर हमेशा के लिए कैद हो जाती है, यहाँ तक इसकी मौत वाकई हो जाती है। मरने से जरा देर पहले वो बाहर निकलने की जो आखिरी कोशिश करती है, इसमें वो नर पौधे के तनासली जर्रात यानी जिसमें उसके वो ऑर्गन्स होते हैं जो आगे रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, वो तनासली जरात मादा पौधे में मुंतकिल कर देती है और रिप्रोडक्शन का निज़ाम या अमल मुकम्मल होता है। ये अजीबोगरीब मामला है कि नर पौधे का हलका पहले मक्खी को दाखिल होने का मौका देता है, फिर इसे फांस देता है, इसके बाद इसे निकलने का मौका फराहम करता है। इसके बरक्स मादा पौधा एक बार फांसने के बाद निकलने का मौका ही नहीं देता। तो कहिए फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये सारी गवाहियां हमारी अक्ल से बहुत ऊपर हैं। ये वो करिश्मे हैं जिसके बारे में सोचकर आप कह सकते हैं कि अल्लाह हम इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। फिर भी हम उस रब पे नजर न डालें, फिर भी हम उसके बारे में न सोचें, कैसे दिन रात अपनी नवाज हम पे फेंकता है, हम एक सेकंड उसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि हमारी अकड़ कितनी है। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से इन नामों पे गौर व फिक्र करने वाला बना दे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हमें इल्म नाफ़े लेने देने वाला बनाए और शैतान के अपने नफ्स के शर से बचाकर हम आफियत में अल्लाह ताला के नामों को मज़ीद सीखें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।